जब हम बहुत खिंचे नपे तुले इस बात से लोग हमें देखेंगे, लोग हमें क्या सोचेंगे, तो बस अब हम कुरान को जज्ब नहीं कर पाते। कुरान को सुन के रोना ना आना दिल की सख्ती की अलामत है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमारे दिलों को नरम कर दे। अगली सूरत शूरा है, जो हकीकत में अंबिया कराम के मुख्तसर जिक्र वाली सूरत, दावत के तरीके सिखाने वाली सूरत, और जब दावत के जवाब में लोग मुख्तलिफ बातें कहें तो उसका जवाब कैसे देना, और इसी के एंड पे हम पोइट्री और शायरी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। तौसीन मीम हरूफ मुकद्दात, ये किताब मुबीन की आयात है, यानी कोई गैर वाज चीज नहीं। किताब सब खोल खोल कर बयान कर रही है कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। आइए दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह की पसंद नापसंद समझ आ गई है तो अब हम इसको मानने वाले बन जाएं। इसके बाद नबी की तड़प का जिक्र है, हाईलाइट कीजिएगा। ला अल्लाह का बाखियो नफ्स का ला यकून मुमिनीन। ए नबी, शायद आप इस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। खुद से पूछिए, क्या मेरी भी जान जली इस बात पर कि दूसरे ईमान क्यों नहीं ला रहे, दूसरे गुनाह क्यों नहीं छोड़ रहे, दूसरे नाफरमानियां क्यों नहीं छोड़ रहे। आज हम कुरान की दावत को कितना सीरियस लेते हैं, हर एक से पूछिए। और याद रखिए कि दूसरों की हिदायत की फिक्र ना होना इस बात की दलील है कि अभी तक खुद भी पूरे हिदायत पर नहीं आए। लोगों की फिक्र करनी है, और ये तड़प आपसे काम लेती है कि लोगों को मेरी जात से फायदा हो जाए। और अल्लाह के नबी ने दिन रात एक कर दिया, दिन को कोशिशें करते थे, रात को उनके लिए दुआएं करते थे। आपका सीना हंडिया की तरह खोलने लगता था जब रातों को आप कुरान पढ़ते थे, एक एक आयत पे सारी रात गुजार देते कि अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे तो दे सकता है, लेकिन अगर माफ कर दे तो तेरे अपने बंदे हैं। आज मुझे और आपको भी फिक्र करनी है। आप देखिए, इसके लिए शर्त यह है कि हम खुद हिदायत पर आ चुके हों। डूबता हुआ शख्स दूसरों को कभी डूबने से नहीं बचा सकता। दूसरे को बचाने के लिए अपना सहारा नहीं छोड़ना। बस दफा दूसरों की हिदायत की फिक्र के नाम पर लोग मसलतों में आ जाते हैं। अब जब मसलत में आएंगे, पैगाम बदल गया, दावत बदल गई, आप किस दीन की दावत देंगे, तब्दील शुदा दीन की या रियल दीन की। इसीलिए जो बंदा दूसरों की हिदायत की फिक्र करता है ना, अल्लाह ताला बरकत दे देता है और उसकी अपनी हिदायत को बढ़ा देता है। पीछे में साहबे कहफ में पढ़ चुके कि जब वो रास्तों में निकले तो अल्लाह ने उनकी हिदायत बढ़ा दी, और वो ऐसी ही जैसे ठुक जाता है। बस आप देखिए, कील है, उस कील पे अगर आपने कोई चीज लटकानी है तो आप उस कील को मजबूत करेंगे ना। इसी तरह जब हम दूसरों को सहारा देने वाले बनते हैं तो हम खुद ब खुद दीन में ठुकने लगते हैं। लेकिन याद रखिए कि दूसरों को हाथ देते देते अपना कुरान और सुन्नत से हाथ ना छूटे। मसलन आप देखिए, कोई ऊपर है कोई, और आप ऊपर उसको बुलाना चाहते हैं, तो अगर आपका अपना हाथ उस सीढ़ी से उतर गया तो आप भी गिरेंगे, वो भी गिरेगा। तो एक खास हद तक फिक्र करनी है, लेकिन ये सोचकर चलो ढीला कर लो, ठंडा कर लो दीन, बहुत सारे ले लेंगे तो वो फिर हिदायत नहीं होगी। और इतना यकीन होना चाहिए हिदायत पर के जो बात अल्लाह ने कह दी वो सच है। किसी बुजुर्ग का कौल है कि अगर आसमान से भी एक आवाज आ जाए कि लोगों झूठ बोलना बुरी बात नहीं है, तब भी मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि उनका दिल ठुक चुका है कि झूठ बोलना बुरी बात है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम खुद हिदायत के ऐसे कील बन जाए ठुके हुए कि जो दूसरों को बुलाने वाले बन जाए। फिर लोग क्यों नहीं मानते, इतनी तड़प थी नबी की फिर भी सब नहीं माने, तो उसकी वजह अगली आयत में, हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं जिनसे इनकी गर्दने आगे झुक जाएं। इन लोगों के पास रहमान की तरफ से जब भी कोई नसीहत आती है ये इससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब जबकि ये झुटला चुके हैं, करीब इनको इस चीज की हकीकत मुख्तलिफ तरीकों से मालूम हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहे। और अब हिदायत की निशानियां कायनात में फैली भी दिखाई जा रही है। क्या उन्होंने कभी जमीन पर निगाह नहीं डाली, हमने कितनी कसीर तादाद में हर तरह की उम्दा नबातात इसमें पैदा की। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। ये जुमला आपको बार बार इस सूरत में मिलेगा, इसको हाईलाइट कीजिएगा। अल्लाह ताला का मामला कौमों और उनके साथ जो मामला हुआ वो इसी असूल की बुनियाद पे था कि अल्लाह ने नबियों को बचा लिया और झुटलाने वाली कौमों को अपने गालिब होने की वजह से अपने अजाबों से मार दिया। फरमावा, इसनाद और रब का मूसा ने तिल कौम अल ज़ालिमीन। इन्हें सिर्फ उस वक्त का किस्सा तो सुनाओ जबकि तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा कि जालिम कौम के पास जाओ, फिरौन की कौम के पास, क्या वो डरते नहीं? उन्होंने कहे, मेरे रब, मुझे खौफ है कि वो मुझको झुटला देंगे, मेरा सीना घुटता है और मेरी जुबान भी नहीं चलती। आप हारून की तरफ रिसालत भेजें और मुझ पर इनके हां का एक जुर्म भी है जिसका इल्जाम मुझ पर, इसलिए मैं डरता हूं कि कहीं वो मुझे कत्ल कर देंगे। फरमाया, हरगिज नहीं, तुम दोनों जाओ हमारी निशानियां लेकर, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। फिरौन के पास जाओ और उससे कहो, हमको रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। यहां से दोबारा मूसा और बनी इसराइल का किस्सा शुरू हुआ। तो चंद बातें इस हिस्से में समझ आई कि अल्लाह ताला ने मूसा को एक काम दिया लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा उसके बारे में क्वेश्चन करते दिखते हैं। तो इससे अमल की बात जो हमें मिलती है वो क्या कि जरूरी नहीं कि हमें जो जिम्मेदारी मिले अल्लाह के रास्ते में वो हमें पसंद भी आए, लेकिन हमने इसलिए करना है कि नीड ऑफ द आवर वही है। बस अब आप देखिए कि लोगों को जिस काम के करने का शौक होता है ना उसकी सलाहियत कोई नहीं होती, लेकिन चूंकि उस काम का शौक है और वो दूसरों में भी दिखता है और कुछ काम दिखते नहीं है तो वो फिर वो काम करने लगते हैं, ढंग का नहीं कर पाते। अल्लाह से दुआ क्या करनी है कि अल्लाह मेरी जो सलाहियत है ना मुझे उसमें आगे कर दे। देखिए अगर सवाब चाहिए ना तो जूते सीधे करके भी मिल जाएगा, और अगर शो ऑफ चाहिए, दिखावा चाहिए, तो फिर दीन का काम करने की क्या जरूरत है? फिर तो कोई दुनिया का काम करके भी इंसान अपने आप को मशहूर कर सकता है। और दूसरी बात याद रखिए कि जो खूबी अल्लाह ने जिसको दी उस पर राजी हो जाए, बस अपना मौका अपना हिस्सा उसमें डाल दें। फिर दूसरी बात ये भी पता चली कि मूसा अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं था कि मेरे अंदर क्या खूबी है, लेकिन अल्लाह ने वक्त में उनको डालकर कुछ इस तरह से उनका स्किल सेट किया कि जिससे उनको मामला दुरुस्त आ गया। फिर से एक और बात पता चलती है कि जब भी किसी नेकी का मौका आता है ना तो साथ ही खौफ होता है, मैं कर नहीं सकूंगी, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिजर्व नहीं करती, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले लूं फिर ना निभा सकूं फिर क्या है? तो आप इस आयत को याद रखिए कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते में चलता है अल्लाह आसानियां करता है। मसलन जिस तरह बाज दफा नई कमिटमेंट्स हैं, आपने रमजान की ये नीयत की, अल्लाह ने आपको दे दिया मौका, माशाल्लाह आप 2/3 कुरान तक पहुंचने लगे, चंद दिनों में कुरान पूरा होगा। आपका क्या ख्याल है, आप इस एक महीने में खुद आए हैं? किसकी मजाल थी मेरे समेत आप में से आने की? सुबह तो आंख ही नहीं खुलती और दिल चाहता चुपके से सो जा, उठेंगे देखेंगे जब 1 बजे होगा, जो उन्होंने किया होगा किया, आई डोंट केयर। कभी कभी ऐसी भी कैफियत आती है, हम सब इंसान है, कोई रोबोट थोड़ी है कि ना नींद आए ना भूख लगे ना प्यास है ना बीमार हो। इस स्टेज में कई जगह ऐसा हुआ, आज सुबह मैं उठी मेरा उठने को दिल ही नहीं कर रहा और मैं सोच रही कि देखती हूँ क्या होता है, क्या होगा, रिकॉर्डिंग चला लेंगे, मुझे किसने रोकना है? मेरी वला से है ना कुरान का पारा मौजूद है, मैं नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मैं सो रही हूँ, फिर किस चीज ने मुझे उठाया? इसी चीज ने उठाया कि नहीं ये मेरी ऑनर है, आप एक दिन मेरे बगैर कर लेंगे, वल्लाह ही अगले दिन आप मेरे साथ नहीं करेंगे, ये मैं आपको सच बताऊं। आप सोचते ना क्या मेरे सामने कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, आपको अगर मैं रिकॉर्डिंग के साथ क्लास शुरू करवा दूं, अगर आप चाहें तो एक ट्रायल करवा देती हूँ छोटे से कोर्स में, आप हैरान हो जाएंगे कि जो उसको आप इंजॉय करेंगे आप मेरी बात को भी इतना इंजॉय नहीं करेंगे। वजह के अब आप सुनते हैं ना तो आपका साथ देखने को दिल करता है, आप इधर देख रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ सारी बात एक इंसान की तवज्जो बढ़ती है। और जब आपके सामने कोई और बैठे और आप रिकॉर्डिंग से क्लास सुनते हैं आपका पूरा फोकस उस वक्त कुरान में होता है, आप लिखने पर गौर करते हैं, तो दोनों के अपने खूबी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, काम करना है ना। तो हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ने अगर मौका दिया है तो किसी के सर पर एहसान नहीं है, ये मेरा मुझ पर एहसान है कि मैंने इस काम को करना है। फिर आप देखिए कि फिरौन के पास भी भेजते हुए कह रहे हैं कि अच्छी बात करना, हम कहां दूसरों के साथ बात करते हैं, काफरों के साथ एहसान का मामला अपनों के साथ क्या होगा। लेकिन देखिए फिरौन अपनी फिरौनियत पे आ गया, ताने देने लगा, कहने लगा, फिरौन क्या हमने तुझको अपने यहां बच्चा सना पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहां गुजारे और इसके बाद कर गया जो तू कर गया। एहसान जतला रहा कि तूने मेरी धन नमक हरामी की, तो बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। मूसा ने जवाब दिया, इस वक्त वो काम मैंने नादानिस्तगी में किया, फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया, इसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया और मुझे रसूलों में शामिल फरमा लिया, रहा तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताया है। तो इसकी हकीकत यह है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बनाया था। कॉन्फिडेंस देखिए मूसा का, वक्त के बादशाह के सामने खड़े हैं और गुलाम कौम का एक शख्स है। आज के दौर में कह लीजिए एक दबे हुए मुसलमान इलाके से उठा हुआ शख्स अपने वक्त की सुपर पावर के आगे बोल रहे हैं, लेकिन हक बंदे को कॉन्फिडेंस देता है, झूठ नहीं बोला, सच बोल दिया, कहा हाँ मैं भाग गया, कोई बड़ी बात नहीं है। اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا، رہا تیرا وہ احسان جو تو مجھ پر جتا رہا ہے، اس کی حقیقت یہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، یعنی میرے پہ بات کرتے ہو، ذرا اپنے دامن میں بھی جھانکو۔ فرعون نے کہا، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، اتنا تکبر تھا رب نظر ہی نہیں آ رہا۔ موسیٰ نے جواب دیا، ذرا کانفیڈنس دیکھیے گا، آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، رہے سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ابا اجداد کا رب بھی جو گزر چکے۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، فرعون کا یہ جملہ اس لیے بول دیا، ورنہ ہم موسیٰ کے لیے یہ جملہ کبھی نہ بولتے۔ دیکھیں فرعون کا کال اللہ نے کوٹ کر دیا کہ موسیٰ کو مجنون کہہ رہے، اور مجنون جن سے، جنون جس پہ جنوں کا سایہ پڑا ہو۔ کیا آج لوگ اس طرح دین والے کی انسلٹ نہیں کرتے، یہ جنونی، یہ فنیٹک، یہ وہ، دس اینڈ دیٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی فکر نہیں کی، بلکہ کیا کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ تھریٹننگ، اللہ اکبر۔ موسیٰ نے کہا، اگر میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے، اگر تو سچ ہے۔ کیسی کراس کوسچننگ ہے، آپ دیکھ کے چوٹ ہے نا۔ اسی لیے اللہ نے بچپن سے موسیٰ کو فرعون کے محل میں پھلوایا تاکہ موسیٰ کا کانفیڈینس ڈیولپ ہو۔ اب آج بتائیے، آپ تبلیغ کریں تو کوئی نان ویسٹرن بندہ ویسٹرن شخص کے سامنے اس طرح تقریر کر سکتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی ڈر جائے گا کہ وہ تو انگلش بول رہا ہے، میری تو انگلش اچھی نہیں ہے۔ تو اس لیے خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے، سیم کلچر کے لوگ، سیم لینگویج کے لوگ ہی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرعون نے ان کی سن بھی لی۔ اگر فرعون اسی علاقے میں رہتے جہاں پیدا ہوئے تھے تو فرعون نے تو ان کو منہ نہیں لگانا تھا کہ تم کون ہوتے ہو جو بولنے والے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ آج مسلمان دنیا کے ہر فیلڈ میں آگے آئیں۔ بار بار یہ میسج آپ کو مل رہا ہے قرآن سے، ہر فیلڈ میں آگے جائیے تاکہ اس فیلڈ میں آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ادھر بات کر سکیں۔ ڈاکٹر ڈاکٹر سے بات کریں، انجینئر انجینئر سے بات کریں، لائر لائر سے بات کریں، پھر وہ آپ کی سنیں گے۔ لوگ نہیں سنتے دوسرے کی بات، ہم برابری کی چوٹ کی بات سن لیتے ہیں۔ جو ہمارے حال حلیے میں بیٹھا ہو، ہمارے ہی جیسی گاڑی میں بیٹھ کے، ہم کہتے ہیں وہ یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، چلو اس کا تو پڑھ سکتے ہیں، اس فائن، یہ سیکھ رہے ہیں، ہم بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بیچارہ، آپ سوچتے ہیں کہ میں اتنی بڑی، اتنی مصروف، اتنی اعلیٰ، اور کوئی بسوں میں لٹکتا پٹکتا آ جائے، اور آپ کے ان کی کیا مجبوریاں، ان کو کیا پتہ ہمارے کیا مسئلے ہیں، ہماری تو ان سے ویو لینتھ نہیں ملتی۔ تو اس لیے ضروری ہے ہر بندہ اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں میں جائے۔ دیکھیں اسٹینڈرڈ اللہ کے ہاں چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، لیکن مائنڈ سیٹ اپ کے لیے ہر بندے کو اپنے لیول کے لوگوں کو چوز کرنا چاہیے، کہ کچھ لوگ ہر ایک سے نہیں پڑھ پاتے۔ حق کی طلب لگ جائے پھر کوئی فرق نہیں رہتا، کیا آپ یوٹیوب پہ کسی پنجابی والے کو سن رہے ہیں، یا کسی بڑے کو سن رہے ہیں، یا آپ کسی اپنے ملک کے سن رہے ہیں۔ ایک دفعہ طلب لگ جائے، ایک دفعہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے، پھر الحمدللہ حق جو ہے وہ دل کو آتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں جن کے اندر رعونت ہوتی ہے، خود کو کچھ سمجھنے کا خیال ہوتا ہے، وہ پھر ہر ایک کی نہیں سنتے، وہ کہتے جائیے آپ ہمیں تنگ نہ کریں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں میں ہمارے لیے سبق ہے۔ خیر ان کی زبان سے یہ بات نکلتی، موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اسلحہ بن گیا، کوبرا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا، وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ یعنی ایک ڈرانے والا معجزہ اور ایک امید دلانے والا۔ آج بھی یہی تبلیغ کا خوبصورت نقطہ، نہ تو لوگوں کو صرف جہنم کی باتیں سنا کے خوفزدہ کر کے آپ آ جائیں، اور نہ صرف لوریاں دے کے جنت کے دلاسے دے کر آ جائیں۔ علیمان بین الخوف والرجا، آپ کی تبلیغ بیلنسڈ ہونی چاہیے۔ ایک گھنٹے کا اگر آپ کا درس ہے نا، 15 منٹ جہنم پہ بات کیے نا، تب 10 منٹ جنت پہ بات کریں، پھر 15 منٹ عمل کی بات کریں، پھر 15 منٹ آخر میں ان کے تذکیہ کے کریں، 1 گھنٹے کا درس تیار ہے۔ اور شروع سے آخر تک آپ ڈراتے ہی رہے، ڈراتے ہی رہے، کوئی بات عمل کی نہیں کی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اتنی بیماریاں شو کر کے آ جاتے ہیں معاشرے کی ہم، پھر کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا۔ تو آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ ساری میری بیماری کی سمپٹمس اور ریزنس بتا کے مریض کو کہ اب جائیے، اب میرا ٹائم ختم ہو گیا، علاج بتائیے۔ ہر درس کے اینڈ پہ ایک سوال خود سے کیجئے کہ جو سسٹرز آ جائی تھیں، کیا وہ کوئی علاج لے کے گئی ہیں کہ نہیں، اور ہی کیا اس تو نہیں برپا کر دیا، خبریں ادھر ادھر کی سنا کر، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے۔ تو درس دینا ایک بہت بڑا آرٹ ہے، بیلنس چیز ہے۔ لوگوں کو وقت کا حساب لگا کر چیک کر لیجئے، شروع میں کیا کہنا ہے، بیچ میں کیا کرنا ہے، کہاں روک کے اب ان کی بات دوسری طرف لانی ہے۔ और शुरू आखिर खूबसूरत कर लीजिए, बीच की बातें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और मूसा अलैहिस्सलाम के इस अंदाज से हमें ये बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन मिल गई। फिरौन अपने इर्द गिर्द के सरदारों से बोला, ये शख्स यकीनन बड़ा माहिर जादूगर है, चाहता है कि अपने इस जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। अब मुझे बताइए, अगर जादू के जोर से किसी के मुल्क पे कब्जा किया होता तो आज सारी दुनिया के हुक्मरान कौन होते? जादूगर होते, सब पे जादू किया और निकाल दिया। तो ये बिल्कुल एक झूठ है। अब बताओ तुम क्या हुक्म देते हो? उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को रोक लीजिए और शहरों में हरकारे भेज दीजिए कि हर समझदार जादूगर को आपके पास ले आए। चुनाचे एक रोज मुकर्रर वक्त पर जादूगर इकट्ठे कर लिए गए और लोगों से कहा गया, तुम इज्तमा में चलोगे, शायद कि हम जादूगरों के दीन पर रह जाएं और अगर वो गालिब रहे। जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, हमें इनाम तो मिलेगा ना अगर हम गालिब रहे। नोट कीजिएगा, जब तक कुफर और जादू पे थे तो दुनिया परस्त थे, जर परस्त थे, कहते थे इसके बाद हमें मिलेगा क्या। देखिए एक बहुत बड़ा फर्क होता है, सच्चा दाइये दीन क्या कहता है, मैं दूसरों को दूंगा क्या, और जो झूठे दुनियादार किस्म को कहते हैं आज हमें मिलेगा क्या। तो इनके दिल की दुनिया कैसे अल्लाह ने बदल दी थोड़ी देर के ईमान के अंदर ही। इसका जिक्र आ गया। फिरौन ने कहा, हाँ तुम उस वक्त मुकर्रबीन में शामिल हो जाओगे। मूसा ने कहा, फेंको जो तुमको फेंकना है। उन्होंने फौरन अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और बोले, फिरौन के इकबाल से हम फी गालिब रहेंगे। ये नारा जैसे आज भी लोग कहते हैं ना, जिंदाबाद फिरौन, जिंदाबाद जब कोई भी लफ्ज जिंदाबाद है वही लफ्ज इधर है, यानी सरासर शिरकिया लफ्ज था। फिर मूसा ने अपना आसा फेंका तो यकायक वो इनके झूठे करिश्मों को हड़प करता चला जा रहा था। इस पर सारे जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर पड़े और बोल उठे, मान गए हम रब्बुल आलमीन को। तासुब नहीं होता तो बंदा फौरन हक को कबूल करता है, मूसा और हारून के रब को। फिरौन ने कहा, तो मूसा की बात मान गए कबल इसके कि मैं तुमको इजाजत देता, जरूर ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। देखिए ये फिरौनियत है कि अपने ही साथियों पे शक करना, नहीं अंदर से तुम किसी और से मिले हुए हो, नहीं अंदर से तुम गद्दार हो। अपने साथियों पे जिसको अपनी टीम पे एतबार नहीं है, वल्ला ही वो कभी दीन का कोई काम नहीं कर सकता। अंधा एतमाद कीजिए आप अल्लाह के रास्ते में आपके साथ देने वालों पे, वो कोई गलत काम करेंगे वो जाने, उनका रब जाने, वो अगर धोखा देंगे तो आपको क्या देंगे। लेकिन जहां दुनियादारी होती है वहां हर वक्त यही फिक्र रहती, इनसिक्योरिटीज, नहीं तुम मुझे छोड़ जाओगे, नहीं तुम ये कर दोगे, देखो तुम बदल ना जाना, प्लीज अच्छा मैं तुम्हें कुछ कर दूं, मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर दूं। तो ऐसी चीजों से, झूठे सहारों से हक वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिरौन अपने साथियों पे शक करके ये साबित कर रहा है कि वो अंदर से कितना इनसिक्योर है। और फिर कहने लगा, अच्छा अभी तुम्हें मालूम हुआ जाता है, यानी पहले उनको लालच दिया बाद में अब डरावे दे रहा है, तुम्हें मालूम हो जाएगा मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमत से कटवाऊंगा और तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, हाईलाइट कीजिए यही जवाब आज हमारी जुबानों पे हो, ला दईर इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, नो प्रॉब्लम। ला दईर क्या, जिसको आज हम कहते हैं वी डोंट केयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के हजूर पहुंच जाएंगे और हमें तवक्को है कि हमारा रब हमारे गुनाह माफ कर देगा क्योंकि सबसे पहले हम ईमान लाए। उनको किसने बताया? मूसा तबलीग कर चुके थे, याद रखिए ये जादूगर एकदम मौजजाना तौर पे इस तरह नहीं हुए, मूसा इन तक तबलीग कर चुके थे लेकिन अभी दिल नहीं खुले थे। एकदम जाहरी नुस्खा देखा, जब हक बातिल का फर्क देखा दिल खुले। इसलिए कभी भी किसी को दीन की कोई बात बतानी और सुनानी हो बता दीजिए, वो दिल में एक बीज की तरह महफूज हो जाएगी, कहीं कोई उसकी जिंदगी में ऐसा मौका आएगा उसको समझ आएगी वो उसको मान लेगा। तो तबलीग कभी जाया नहीं जाती, अच्छी बात जरूर कीजिए चाहे वक्ती तौर पे आपको लगे कि उसका कुछ फायदा ही नहीं है। खैर दिन के शुरू में जादूगर थे, आखिर में बलीउल्लाह बन गए। सडन चेंज कैसे आया? सोच सीधी थी, बात पहले पहुंची हुई थी, जब उसका अमली नमूना देखा तो मान गए। हम सोचते ही रहते हैं, कई लोग तो 10-15 साल से सोच रहे हैं कुछ नेकियां करने को और कुछ गुनाहों को छोड़ने को, आज तक नहीं छोड़ सके क्योंकि गुनाह को एक झटके से छोड़ना पड़ता है। अरबी का एक मुहावरा कहते हैं कि नफ्स दूध पीता बच्चा, गुनाह छोड़ना चाहते हो तो ऐसे छोड़वाओ जैसे बच्चे से मां दूध छुड़वाती है, एक दफा छुड़ा दिया छुड़ा, रोएगा रो रो के, खुद ही भूखा होगा आखिर में पी लेगा, और बच्चा रोए मां फिर उसको दूध दे दे, बच्चा रोए फिर दे दे, तो वो बच्चे कभी दूध नहीं छोड़ते। तो लिहाजा अपने नफ्स से गुनाहों को इसी तरह से छुड़ाना है और अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान। हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा, साथ ही बता दिया कि देखो तुम यू विल बी चेस्ट। तो ये तो हो गई। इस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेज दी और कहला भेजे, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, थोड़े से लोग हैं। कौन? वइन्नहुम लना लगाइज़ून, इन्होंने हमको बड़ा गुस्सा किया, यानी बड़े ये गुस्से वाले और बड़े टेररिस्ट किस्म के लोग हैं, इनको पकड़ो। और हम एक ऐसी जमात हैं जिसका शेवा हर वक्त चुकन्ना रहना है, अपने पर मान कर है, अपनी सिक्योरिटी पे, कि हमारे आपको पता है सिस्टम कितने स्ट्रांग है, हम तो हर वक्त अवेयर रहते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। इस तरह हम इन्हें इनके बागों और चश्मों और खजानों और इनकी बेहतरीन क्यामगाहों से निकाल लाए। ये तो हुआ इनके साथ, और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने इन सब चीजों का वारिस कर दिया। कितनी हसरत है इस जुमले में, फखरजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून। देखिए बाकी कौमों पे जब अजाब आए ना, तो उनके घर बार सब साथ ही खत्म हो गए। कौमे फिरौन के साथ क्या हुआ, ये अपने घरों से निकले, समंदर में डूबे, ये डूब गए, इनके घर खजाने सब बाकी। इसीलिए आज तक इजिप्शियन कल्चर मौजूद है। कौमे समूद का कल्चर नहीं दिखेगा, आद का नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी सब सिविलाइजेशन और उनकी बस्तियां तबाह बर्बाद हो गई अजाबों में। लेकिन चूंकि ये समंदर में डूबे गए थे, तब उनके महल तो आके नहीं डूबे जा सकते थे, तो वो निकले, उसी की जगह अल्लाह ने बनी इसराइल को डाल दिया वापस। सुबह होते ही लोग इनके ताकुब में चल पड़े। जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ, तो मूसा के साथ ही बोल उठे, हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। हाईलाइट करें, आज ऐसे लीडर्स की जरूरत है। जब लोगों के हौसले टूटने लगे, तो वो कहें, नमाई और रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से हुक्म दिया, मार अपना आसा समंदर पर। यकायक समंदर फट गया और इसका हर टुकड़ा एक अजीम शान पहाड़ की तरह हो गया। इसी जगह हम दूसरे गिरोह को भी करीब ले आए। मूसा और इन सब लोगों को जो इनके साथ थे, हमने बचा लिया और दूसरों को गर्क कर दिया। उस दौर में अगर कोई अखबार या कोई मीडिया होता, तो इस खबर को कैसे पेश करता? बिल्कुल नामुमकिन बात हुई ना। एक बड़ी ताकत डूब गई और छोटी सी कमजोर कौम जो अल्लाह की मदद से बच गई। तो ये तो उस वक्त की कहानी अल्लाह ने पेश कर दी। एक और वाक्या, इस वाक्य में एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और हकीकत है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। और इन इब्राहिम का किस्सा सुनाओ, जबकि इन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा था, ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूछते हो? ये कुछ बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और इन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। इसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इनको पुकारते हो? देखिए कितनी रीजनिंग पेश की जा रही है। और आज भी इसी तरह से दीन वालों को शिर्क वालों से बात करने की जरूरत है, क्या वाकई ये सुनते हैं या ये तुम्हें कुछ नफा नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने तो अपने बाप दादा को ही ऐसा करते पाया। ये है हर दौर के मुशरिकों और दुनिया परस्तों का जवाब, कि चूंकि हमारे बड़े ऐसा करते थे, इसीलिए हम भी ऐसा करते हैं। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोल कर भी इन चीजों को देखा जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा बजा लाते रहे? आज हमारे यहाँ भी यही है, बहुत सारी रस्में सिर्फ बाप दादा के नाम पे हो रही हैं। तो हर रस्म से पहले सवाल करना, ये रुश्त का आगाज है। आज किसी से जरा जाके तो पूछ लीजिए कि ये पीला जोड़ा आप क्यों पहनते और पहनाते हैं, तो हो सकता है उनको खुद भी इसका जवाब ना आता हो, लेकिन कम अज कम इससे शऊर तो बेदार हो ही जाता है और इसकी जरूरत भी है। फरमाइए, मेरे तो ये सब दुश्मन है सिवाय एक रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझको पैदा किया। अब यहां से हजरत इब्राहिम का खूबसूरत कलाम सुनिएगा, अल्लज़ी खलकनी फहुव यहदीन वल्लज़ी व युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन। फिर आप देखिए कि फरमाया कि जब मैं बीमार हो जाता हूं तो मुझे शिफा देता है। यहां नोट किया आपने, जो गलत काम थे यानी तकलीफ वाले बीमारी वाले, तो अपनी तरफ का, मैं बीमार होता हूं और मैं, लेकिन जब खिलाने की बात है तो अल्लाह की तरफ। ये है अदब, नबियों का अल्लाह के साथ अदब का मामला कितना खूबसूरत था। फरमाया, जो मुझे खिलाता और पिलाता और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझको शिफा देता है, जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा मुझको जिंदगी बख्शेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोजे जजा में वो मेरी खता मुआफ फरमा देगा। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। इतनी खूबसूरत दुआ है, आइए हम सब मांगते हैं मिलकर, दुआ के रंग में पढ़ेंगे इसको, तजवीद के रंग में हम नहीं पढ़ेंगे। क्या फरमाते हैं? रब्बी हबली हुक्मम वल्हिकनी बिस्सालिहीन वजअल्ली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन वजालनी मिम वरसती
जन्नत
जन्नत नईम
नईम
واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما یعنی حکمت دے اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد سوائے اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوں. قیامت کے دن کی کرنسی مال اور اولاد نہیں ہے بلکہ قلب سلیم ہے. قلب سلیم کون سا دل ہوتا ہے؟ جو اللہ کی محبت میں اشد، اللہ کی اطاعت میں اشد اور اللہ کے خوف میں اشد. سلامت دل، دنیا کی خواہشوں سے سلامت، نافرمانیوں سے سلامت، جس دل کو ساری زندگی انسان بچا بچا کے رکھتا ہے کیونکہ میں نے یہ اللہ کو پیش کرنا ہے. کوئی چیز آپ نے کسی کو گفٹ میں دینی ہو تو آپ کتنی کیئر کرتے ہیں، پیکنگ بھی خراب نہیں کرتے. اور اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دے اور ٹوٹی بھی ہو یا آپ کو پتہ چلے جو آپ نے کسی کو چیز دی وہ ٹوٹی بھی نکلی تو کتنی شرم آئے گی، ہائے ٹوٹی بھی چیز دی. تو اپنے آپ سے پوچھئے کیا خواہشوں سے ٹوٹا ہوا دل اللہ کو دوں گی، گناہوں سے چور چور دل اللہ کے یہاں پیش کروں گی؟ تو اپنے دل کو سجائیے، صاف ستھرا رکھیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کل قیامت کے دن یہ اپنے رب کو پیش کرنا ہے. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو سلامت دل بنا دے. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، وبرزت الجحیم للغاوین، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی. اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے. نوٹ کیجئے، وہاں جا کے جس چیز کا احساس ہوا، اگر اس دنیا میں اس کا احساس ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بچاتا. تو کیا پتہ چلا کہ کبھی بھی کسی کو اللہ کے مقام پر یا اللہ والی صفات میں اس میں ڈھونڈنے سے پہلے اپنے آپ کو پوچھ لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کیا یہ میرے کسی کام آ سکیں گے. فرمایا اور وہ مجرم ہی لوگ تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، نہ اب ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں گے. اب کیا فائدہ، وقت گزر گیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھ کو مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی. نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے میں ان کو دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف آگاہ کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا نوح اگر تو باس نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. اب دیکھیے قوم نوح کا یہاں ذکر ہے، قرآن میں کہیں بھی حضرت نوح کی کوئی کتاب کا ذکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی. کیسے؟ کہ نبی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہی تبلیغ ہوتی ہیں. پھر یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات گزری جو شاید آپ نے نوٹ کی ہو کہ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پرووک کرنا چاہا کہ تمہیں پتہ یہ جو تمہارے سامنے بڑے نیک بنے ہوتے ہیں نا، بعد میں یہ کیا کرتے ہیں. گویا کہ ایسے ہی کسی استاد کو کہا جائے آپ کو پتہ آپ کے اسٹوڈنٹ رات کو کہاں گئے ہوئے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے، تو کہا مجھے کیا لگے. تو یہاں سے عمل کی بات نوٹ کیجیے، جس کو آپ دین کی بات بتا دیں اس کے بعد کے کسی عمل کی کوئی ٹو نہ رکھیں، وہ بعد میں کچھ بھی کرے ہینکی پینکی آپ کو کیا لگے، آپ نے دین کی بات بتا دی. جب ہم لوگوں کی ٹو میں پڑ جاتے ہیں، بعض لوگ واقعی تانے دینے کے لیے آتے ہیں، اچھا آپ کو پتا ہے وہ جو آپ کے پاس آتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، तो बाप बताइए कि आप उनके साथ क्या करते हैं। बाद शौहर थ्रेट करते हैं, तुम्हारी उस्ताद आले जरा हम उनको शिकायत लगाएंगे, तो ये भी तो बताएं कि आप क्या करते हैं उनके साथ। इस तरह के बहुत सारे मामला हो जाते हैं, तो हमेशा लोगों के साथ अच्छा मामला रखिए और उनके बारे में अच्छा गुमान रखिए। काला रब्बी इन्ना कौमी कज़्ज़बून, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मेरे रब मेरी कौम ने मुझको झुटला दिया है, अब मेरे और इनके दरमियान दो टोक फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं इनको निजात दे। क्या पता चला कि एक वक्त आता है अपनों को छोड़ना पड़ता है अल्लाह की नाफरमानियां करने की वजह से। आखिरकार हमने इसको और इनके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया और इसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। क्या पता चला, मेजोरिटी इज नॉट द अथॉरिटी। हम कहते हैं जहां सब चलता है तुम चलो, नहीं फिर सब डूबेंगे तो हम भी डूबेंगे। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और हकीकत यह कि तेरा रब जबरदस्त भी और रहीम भी है। और इसी तरह कज़्ज़बत आदुन इल मुरसलीन, आद ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि इनके भाई हूद ने इनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब भी नहीं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। ये तुम्हारा क्या हाल है कि हर ऊंचे मुकाम पर लाकर ला हासिल यादगार इमारत बना डालते हो और बड़े बड़े महल तामीर करते हो, गोया तुमको हमेशा यहाँ रहना है। हाय लड़की जी, जो कौम अपने रिसोर्सेस को वेस्ट करती है अल्लाह उसको वेस्ट कर देता है। अल्लाह ताला इसमें उस कौम पे तनकीद करते हुए देखते हैं कि जिनके मुल्कों में स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, रोड्स टूटी हुई, और वो यादगारें बनाते हैं, घरों को महल नुमा बनाते हैं जिसमें रहना किसी ने नहीं, कहीं कुछ लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, सड़कों के किनारे रह रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो एक दो लोगों के लिए इतना बड़ा महल है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बेकार किस्म की इमारतें बनाने से रोक दिया कि ऐसे लोग ऐसी इमारतें बनाकर खुद अल्लाह ताला को मौका देते हैं कि वो उनसे जरूर पूछे कि बताओ जो रिसोर्सेस तुमको दिए गए थे तुमने उनको यूज किया या मिस यूज किया। और एक और उनका जुर्म क्या था, वैसा बतश तुम जब्बारीन, और जब कभी किसी पर हाथ डालते हो तो जब्बार बनकर डालते हो, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, डरो इससे जिसने तुम्हें वो कुछ दिया जो कुछ तुम जानते हो, तुम्हें जानवर दिए, औलादें दी, बाग दी और चश्मे दिए, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े दिन के अजाब का डर है। जरा जवाब सुनिएगा, उन्होंने जवाब दिया, तू नसीहत कर या न कर हमारे लिए सब यकसा है। आज भी कुछ लोग मुंह जोर होकर ऐसे ही कहते हैं, अपनी बातें अपने पास रखो, बस मुझे ना समझाओ, मुझे सब पता है, सब पता है मुझे, तुमने आप सीखना शुरू किया, मैं तो शुरू से जानता हूँ। भाई आपके जानने का असर दिखे, मैंने तो 4 दिन सीखा, मेरी तो दिल की दुनिया बदल गई, आप कौन सा इल्म रखते हैं। तो याद रखिए, जो इल्म आपके अमल में ना ढले वो इल्म ही नहीं है। फरमाया, ये बातें तो यूं ही होती चली आई और हम अजाब में मुबतला होने वाले नहीं, आखिरकार उन्होंने इसे झुटला दिया और हमने इनको हलाक कर दिया। और यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। ये अल्लाह का रहम है कि कौमें बची हुई अजाबों के साथ, और गालिब है कि पकड़ ले लेकिन हिकमत की वजह से पकड़ता नहीं। इसी तरह एक और कौम कज़्ज़ब समूद उल मुरसलीन, समूद ने रसूलों को चुटलाया। याद करो जबकि इनके भाई साले ने इनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, क्या तुम इन सब चीजों के दरमियान जो यहाँ है बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे। इन बागों और चश्मों में, इन खेतों और नखलिस्तानों में जिनके खोशे रस भरे हैं, तुम पहाड़ खोद खोद कर फखरिया इनमें इमारतें बनाते हो, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, इन बेलगाम लोगों की इताअत न करो जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और कोई इसलाह नहीं करते। देखिए कितनी बड़ी धमकी है, आप इस पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट कर लें और बाद में तन्हाई में खुद से पूछें, आज जिस आफियत और इत्मीनान में मैं जी रही हूँ, क्या जिंदगी हमेशा इसी डगर पे चलेगी। आफियत बहुत बड़ी नेमत है, अगर सेहत है तो अल्लाह का शुक्र कीजिए, फुर्सत है तो अल्लाह का शुक्र कीजिए, माल है तो अल्लाह का शुक्र कीजिए, नेमतों को पलटते देर नहीं लगती, करना क्या इन नेमतों को अल्लाह के रास्तों में खपाकर अल्लाह ताला को राजी करना है। फिर इसके बाद फरमाया एक और इनसे, जो इन्होंने नबी के साथ बात की उसका क्या मामला था, इन बेलगाम लोगों की सी इताअत न करो जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और कोई इसलाह नहीं करते, उन्होंने जवाब दिया, महज तू एक सहरजदा आदमी है, तू हम जैसे एक इंसान किस और है क्या? ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। सवाल इस्लाम ने कहा, ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पीने का और एक दिन तुम सबके पानी लेने का, और इसको हरगिज न छेड़ना वरना एक बहुत बड़े दिन का अजाब तुमको आ लेगा। लेकिन फाकरूह बस बहु नादिमीन, मगर उन्होंने इसकी कूछें काट दी और आखिरकार पछताते रह गए और अजाब ने इनको आ लिया। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं, और हकीकत यह कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। कज़्ज़बत कौम लूत इल मुरसलीन, लूत की कौम ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि इनके भाई लूत ने इनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब भी नहीं हूं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम दुनिया भर की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया इसको छोड़ देते हो, बल्कि तुम लोग तो हद से ही गुजरे हुए लोगों। नबी की दावत कितनी क्लियर थी, अब जरा कौम का जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा, ऐ लूत, अगर तू इन बातों से बाज ना आया जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए हैं तो तू भी इनमें से ही शामिल होकर रहेगा। आज भी इसी तरह लोग होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इसी तरह उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं जैसे उस कौम ने किया। सवाल पैदा होता है कि आज हम इस्लाम पर स्टैंड क्यों नहीं लेते, आज हम हक को क्यों नहीं लोगों के साथ इतने एतमाद से पेश करते जितने एतमाद से लोग गैर फितरी चीजों को आम करते हैं। कहने लगे, तुम्हारे करतूतों पर जो लोग कुढ़ रहे हैं मैं तो इसी में शामिल हूं, ऐ परवरदिगार मुझे और मेरे घर वालों को इनकी बदकिरदारियों से निजात दे। आइए हम भी दुआ करें कि अल्लाह हमारी नस्लों को भी ऐसी गंदगियों से महफूज रखना। आखिरकार हमने इसे और इसके सब अहलो याल को बचा लिया सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में थी, फिर बाकी ईमानदार लोगों को हमने तबाह कर दिया और उन पर बरसाई एक बरसात बड़ी ही बुरी बारिश थी जो उन डराए जाने वालों पर नाजिल हुई। किस चीज की बारिश थी? पत्थरों की बारिश, स्टोन रेन। इन नफी जालिकल आया वमा कान अक्सरहुम मुमिनीन, यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं, और हकीकत यह कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। कज़्ज़बत असहाबु लैकत अल-मुरसलीन, असहाबु लैका ने रसूलों को छुटलाया। याद करो जबकि शुएब ने इनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। पैमाने ठीक भरो और किसी को घाटा न दो, सही तराजू से तोलो और लोगों को इनकी चीजें कम न दो, जमीन में फसाद न फैलाते फिरो और उस जात का खौफ करो जिसने तुम्हें और गुज़श्ता नस्लों को पैदा किया। उन्होंने कहा, तू महज एक सहरज़दा आदमी है और तू कुछ नहीं मगर एक इंसान हम ही जैसा, और हम तो तुझे बिल्कुल झूठा समझते हैं, अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। शुएब ने कहा, मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। उन्होंने इसे झुटला दिया। आखिरकार छतरी वाले दिन का अजाब इन पर आ गया और वो बड़े ही खौफनाक दिन का अजाब था। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें अक्सर मानने वाले नहीं, और हकीकत है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। बार बार रियायत आई, यहाँ आखिरी बार आई, तो समझ लीजिए कौमों के इन तबाह होनों में ये निशानी है कि जिसने भी कभी ऐसे काम आज भी किए अल्लाह उनको भी पकड़ सकता है। पकड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह ने लोगों को मोहलत दी हुई है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जिन अजाबों पे अल्लाह ने पिछली कौमों को पकड़ा हमें उनसे महफूज रखें। अब यहाँ से सूरत का एंड है। وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, ये रब्बुल आलमीन की नाजिल करता चीज है, इसे लेकर तेरे दिल पर अमानतदार रूह फरिश्ता उतरा यानी जिब्राइल, ताकि तू इन लोगों में शामिल हो जो खुदा की तरफ से खल्के खुदा को मुतनब्बिह करने वाले साफ साफ अरबी जुबान में है, और अगले लोगों की किताबों में भी ये मौजूद है। ये कुरान की डिटेल डेफिनेशन है, उलूमुल कुरान में आप सीखेंगे जाके तो फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। और वो क्या है कि कुरान हकीकत में अल्लाह के नबी के दिल पर नासिल किया गया, फरिश्ते जिब्राइल के जरिए से आया, और इसका मकसद क्या था इस पे मैं और आप 3 सेकंड तो कम अज कम लगा दें कि अल्लाह के नबी को किताब क्यों दी गई, ताकि ली तकून मिनल मुनज़िरीन, डराना। आज लोग कहते मत डराओ, मत सुनाओ, मत बताओ, تو قرآن کا اگر یہ پیغام آپ نے چھوڑ کر صرف اس کو اپنی ہی اصلاح کا ذریعہ بنا لیا تو اللہ کے نبی گھر میں کہیں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے. تو قرآن کا مزاج انذار کا ہے, گھر بیٹھ کے انذار نہیں ہوتا. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا. ذرا خود سے لکھئے, کیا میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کتاب کی دعوت کو عام کرنے کے لیے چن لیا؟ آپ اسٹوڈنٹس کہیں گے ہمیں کہاں چنا ہے, تو اگر آپ نہ آتے تو ہم کس کو سناتے؟ قرآن سیکھنے کے لیے آنے والا سب سے پہلا فرد ہوتا ہے کسی ٹیم کا, کیونکہ خالی استاد نہیں سکھا سکتا جب تک سیکھنے والے نہ, سکھانے والے ہیلپر ٹیم پوری موجود ہو, کوئی آئے ہی نہ کس کو سکھائیں گے. تو آپ ماشاءاللہ اس کام کا خاموش حصہ ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو اس وقت بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں, وہ ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ. تو کیا آپ اس خوش قسمتی کو بس یہاں رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اگر ایٹ ونس اسپونٹینیسلی بغیر سوچے میں آپ سے کہوں کہ ہم رمضان کے ایک ویک کے بعد نیا کورس شروع کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے آنے کے لیے خوش بختی سمجھیں گے؟ اللہ گواہ ہے آپ کے لیے. اور جس کو ہدایت لینی ہوتی ہے نا وہ تو شکر کرتا ہے, کیونکہ دیکھیے کوئی سال میں ایک دفعہ تو نہیں کھانا کھاتے نا, یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے لینے والی بات. یہ طور قرآن جو ہوتا ہے نا, یہ ایپٹائزر ہے جس کو آپ کھانے سے پہلے کھاتے ہیں. ہمارے بڑے کہتے تھے کھانا کھانے سے پہلے کچھ نہ کھاؤ نہیں تو بھوک ختم ہو جائے گی. ہاں آج پہلے ہی پیٹ بھر دیتے ہیں سموسے پکوڑوں سے. کھانا کم کھلاؤ, لوگوں کو پکوڑے سموسے کھلا دو. ہاں تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہوگا مجھے یقین ہے, لیکن جب آپ پورا پڑھیں گے تو آپ کہیں گے ہم دورہ قرآن کو بہت زیادہ کہتے تھے. بعض لوگ جو پہلی دفعہ سنتے ہیں نا تو وہ پھر کمنٹس دیتے ہیں اور آتے رہتے ہیں ادھر ادھر, آج تو آپ نے اتنی ڈیٹیل بتائی, اتنی ڈیٹیل بتائی. تو بعض دفعہ جو ساتھی پاس بیٹھے ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ سبیل الجنہ میں کیا ہوتا ہے تو وہ ہنس پڑتے ہیں, کہتے ہیں آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں آپ کو ملا کیا. تو یاد رکھیے جتنا گڑ اتنا میٹھا, ایک مہینے میں جو مل رہا ہے یہ بھی بڑی بات ہے, اتنا تو ملتا بھی نہیں ہے. سچی یہ اللہ کی کوئی خاص ہی رحمت ہے کہ ہمارے اس 2.5 گھنٹے میں ایک پارے میں اتنا کچھ ہم کور کرتے ہیں. نان سٹاپ اس کا ترجمہ ہلکی سی وضاحت کے ساتھ کریں تو 2 گھنٹے لگتے ہیں, لیکن میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ کم از کم ہر بات چھڑ جاتی ہے چاہے اس کو بعد میں ہم ڈیٹیل سے نہ دیکھ سکیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس مقام پہ فخر کرنے والا بنا دے, کہ اللہ تو اب ہمیں اس کے ساتھ ہی جوڑے رکھنا. پھر فرمایا اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں, کسی علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں, لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی زبان میں ان کو کلام پڑھ کر سناتا تب بھی یہ اس کو مان کر نہ دیتے, اس طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارتے ہیں. ہائی لائٹ کیجیے, ہر ایک کو قرآن سن سنا کر پڑھ پڑھا کر مزہ نہیں آتا, بلکہ فرمایا ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے. کس طرح؟ اس طرح کہ وہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ یہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں, پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے. یعنی ہر ایک اس قرآن کو سن نہیں پاتا, کچھ کے دلوں میں سلاخوں کی طرح چپتا ہے. کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو خود کو بدلنا نہیں چاہتے. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیتے پھر بھی وہی چیز ان پر عام پڑے گی جس ان کو ڈرایا جا رہا ہے, تو وہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ اور حقیقت ہے جب سیلاب اور سونامیز آتی ہیں تو سب سامان پڑے رہ جاتے ہیں, کوئی چیز ان کے کام نہیں آتی. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون, اور دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. یعنی اللہ پکڑنے سے پہلے پیغام پہنچاتا ہے, پیغام مل جائے پہنچ جائے پھر کوئی نہ مانے تو پکڑاتی ہے. تو یہ کتاب کیا ہے؟ ہائی لائٹ کیجیے گا, ذکرا. بس ایک لفظ ذکرا, یہ تو ایک ریمائنڈر ہے, یہ خوبصورت ریمائنڈر ہے. وما کننا مظالمین, اور ہم ظالم نہ تھے. وما تنزلت به الشیاطین, اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے, نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں, وہ تو اس کے سننے تک سے دور رکھے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کیا کرتے تھے بلکہ الزام ہی لگاتے تھے, اور وہ کہتے تھے آپ کے پاس نعوذ باللہ شیطان آتے ہیں اور آپ کو یہ قرآن دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ قرآن اتنا پیارا کیا شیطان بھیجیں گے؟ نہیں, اس کو تو روح الامین سے بھیجا گیا, अब शैतान क्या करते हैं उसका जिक्र अगले हिस्से में आएगा। पस नबी अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद ना पुकारो वरना तुम भी सजा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ। हाईलाइट कीजिएगा आयत नंबर 214। वानजिर अशीरतक अलअक्रबीन, ये है आयत जो शुरू में नाजिल हो गई थी और इसके बाद अल्लाह के नबी ने अपने रिश्तेदारों को जमा किया, कबीले कुंबे को और बनु हाशिम और सब को पुकार पुकार कर कहा कि लोगों मैं तुम्हें आग से बचाना चाहता हूँ। क्या मैं और आप इस आयत पर अमल करते हुए अपने करीबी रिश्तेदारों को वॉर्न नहीं करेंगे? लिखिए, जिसको भी बात कर सकते हैं उस तक पहुंचे, दूर रहते हैं तो उनको नेट से जोड़िए, करीब रहते हैं तो सिर्फ इस आयत पर अमल की नीयत से एक दिन साथ ले आइए, इस सोच के साथ कि हम इस आयत पर अमल कर सकें, क्योंकि शुरू में हमने दुआ की थी कि अल्लाह हम जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। और फरमाए, ईमान लाने वालों में जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें इनके साथ तवाज़ो से पेश आओ, लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो इनसे कह दो जो कुछ तुम करते हो इससे मैं बरीउस्सिमा हूँ, और उस जबरदस्त और रहीम पर तवक्कुल करो जो तुम्हें उस वक्त भी देख रहा होता है जब तुम उठते हो, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर निगाह रखता है, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। इल्जाम क्या था कि ये कुरान शयातीन के जरिए आया? तो कहा, नहीं, आओ तुम्हें बताऊं, शैतान नबी के दिल पे तो नहीं उतरते, बल्कि क्या उतरते हैं? हल उनब्बियुकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ्फाके नसीम। लोगों, क्या मैं तुमको बताऊं कि शयातीन किस पर उतरा करते हैं? वो हर जालसाज बदकार पर उतरा करते हैं, सुनी सुनाई बातें कानों में फूंकते हैं और इनमें से अक्सर झूठे होते हैं। रहे शोरा, तो इनके पीछे तो बहके हुए लोग चला करते हैं, क्या तुम देखते नहीं है वो हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं। मसलन क्या कहते हैं शायर, तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ के लाऊं, हाँ तेरे लिए दूध की नदियां बहा दूं, करिए बनाइए लाइए शाबाश। आज आप HEB से नहीं बल्कि इधर के हैं वॉलमार्ट, आज वॉलमार्ट से नहीं, आज आप खुद ही दूध की नहर खोद के दूध की बॉटल लाएं, तो मियाँ साहब भी बैठे रहेंगे और आप भी चाय बनाने से बैठी रहे। कितनी गैर हकीकी बातें हैं और कितना शिर्क है गानों में, ये गानों की बातें हो रही हैं, वो पोइट्री जिसमें फिक्शन हो, झूठी मोहब्बतें झूठी बातें। आप देखिए कितना मुबालगा कितना एग्जेजुरेशन, तुझे बनाया खुदा ने मेरे लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। हम कहते कुल इन्न सलाती व नुसुकी व मख्याया व मवाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तेरे लिए जियो तेरे लिए मरूं। मैं तो भोंडे तरीके से पढ़ रही हूँ, आप जरा गाने की सूरत में बोल तो याद कीजिए चंद, क्या क्या उसमें होती बातें। यकीन कीजिए ये है वो चीज जिसने आज उम्मत मुस्लिमा को डुबोया हुआ है। जब तक ये चीजें नहीं छुटती कुरान नहीं आता, ये आजमाई भी बात है। एक दिल में कुरान और गिना नहीं आता और झूठे गाने झूठी बातें, और शैतान नाचता है उस दिल पे जिसके कानों के अंदर म्यूजिक चाह रहा होता है। आप इसको जायज नाजायज की बात पे ना लाएं। अभी आप ये देखिए कि इसके बाद जिंदगी का मकसद कितनी जल्दी भूलता है। यहां भी बात आ रही है, आगे जाके इंशाल्लाह सूरह लुकमान में आएगी, सूरह नजम में आएगी, पीछे सूरत बनी इसराइल में गुजर गई। तो कोई अच्छी सी नीयत करें, चलें गाने सुनने तो बगैर म्यूजिक के सुन लें फिलहाल पहले स्टेप पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता होगा। फिर ये कहें कि मैं सच्ची शायरी सुनूंगी, झूठ नहीं सुनूंगी। सच्ची शायरी कौन सी है? किस मोहब्बत की शायरी सच्ची है? हाँ, अल्लाह की मोहब्बत की। और जी, माँ बाप की मोहब्बत का गाना सुन ले। और जी जी, कोई हर्ज की बात नहीं। और दीन की मोहब्बत के मिल्ली नगमे कौमी नगमे, चलिए यानी थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने की जरूरत है, लेकिन झूठ नहीं सुनना। दुआ करें कि अल्लाह हमारी जिंदगियों से झूठ निकाल दे। और माँ बाप के नाम पे भी कुछ लोग ऐसे गाने सुनते हैं जो मुबालगे की हद तक बड़े होते हैं। हाँ, मैं कह कि कभी याद ना आए इस घर से बंदे हैं भाग तेरे हैं, ये कैसे हो सकते है? बेवकूफी की बात है कि आपको मैका याद ना है, है? कभी सोच सकते हैं? ये तो इतनी बड़ी कतई रहमी वाला मिसरा है कि इसको बैन करना पड़ेगा। मैके की याद आएगी, जितना ससुराल में प्यार मिलेगा उतना मैका याद आएगा। तो ये इस तरह की थोड़ी थोड़ी इसलाह कर दे, बाकी गाने ठीक है, है? बहरहाल आगे चलते। अब अल्लाह तला की बात सुने, ये मैं नहीं कह रही लेकिन अल्लाह तला कह रहे, रहे शोरा यानी पोइट्स क्या करते हैं? तो इनके पीछे तो बहके हुए लोग चला करते हैं, क्या तुम देखते नहीं वो हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते ही नहीं है, बजुस इन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और लोगों को कसरत से याद किया, और जब इन पर जुल्म किया गया तो सिर्फ बदला ले लिया, और जुल्म करने वालों को अन करीब मालूम हो जाएगा कि वो किस अंजाम से दो चार होते हैं। तो अच्छी शायरी पसंदीदा है। अगर आप अल्लाह के दीन की मोहब्बत जगाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत, नबी के बारे में बगैर मुबालगे के नाते पढ़ते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं भी एग्जैजुरेशन के नाम पर हमने अहद को अहमद नहीं करना, और वही जो था पर अर्श पे खुदा बनकर, वही आगे अहमद बनकर, इस तरह का मुबालगा छोड़ दें तो बाकी शायरी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो आफियत के साथ हमें इस कुरान से जोड़ दें। अभी आपने जो तिलावत सुनी थी आपको कैसी लगी? मजा आया ना? जब मिशारी कुरान पढ़ते हैं कैसा लगता है? सच बताइए, गाना शायरी एक तरफ और कुरान की अच्छी आवाज की तिलावत एक तरफ, टेस्ट चेंज कर लीजिए। जस्ट गिव देम ऑल्टरनेट। आप चाहते हैं आपके बच्चे ना सुने, आप ना सुने, कोई ना सुने, तो बस उसका तरीका यही है कि आप अपने लिए बेहतरीन तरीके से लेकर चले। चलिए 192 से सूरह शुरा आप सबने भी मिलकर पढ़ना है। आपकी आवाजें अच्छी लगती हैं हमें साथ पढ़ते हुए। आउज़ बिल्ला के साथ शुरू करेंगे, शुरू कीजिए। ऊंची से पढ़िए। وسلم سے خطاب ہے، فرمایا کر دے.